राधा माधव कुंज बिहारी जनवल्लभ तिरवरधारी गोपी जन गोपी जनवल्लभ यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता
जय विष्णुपाद परमहंसवरी विराज प्रचार्य अष्टोत्तर शिष्य मदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर षट शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग हरे ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सचीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप लोग सब आगे आ जाइए, कुछ दीवार से सहारा चाहिए आपको, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है, आगे आके बैठिए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए। पिछली बार ऐसा हुआ था कि हिंदी में इसको कहेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बीच में जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे हमें जीवन में जीना चाहिए, कैसे जीवन में रहना चाहिए। विषय है क्या कर्म ही पूजा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, बस अपना कर्म करो वही पूजा है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से अपना कर्म करो, आप जहाँ भी हो जो भी कर्म आपको दिया गया है कार्य करो अपना, बस वही पूजा है। तो आज का विषय यही है कि क्या कर्म पूजा है या फिर कुछ और भी है। तो आज के जो हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और उन्होंने दिखलाया कि कैसे अपने कर्मों को पूजा बनाया जाता है। ये एक कला है जिसे हम सबको सीखना चाहिए। भगवद गीता जैसे ग्रंथ केवल इसीलिए दिए जाते हैं कि जिसके द्वारा हम लोग ये सीख सकें कि कैसे अपने कर्मों को हमें आध्यात्मिक बनाना है। और श्रील प्रभुपाद ने सारी दुनिया में इसका प्रचार किया, इन शिक्षाओं का प्रचार किया, और जिसके कारण आज सारी दुनिया में, पूरे जगत में, हर देश में आज लोगों ने अपने कार्यों को पूजा बनाया है और अपने कार्यों को वो पूजा के रूप में कर रहे हैं। वही कार्य हैं, लेकिन कैसे उनको पूजा बनाना है ये श्रील प्रभुपाद ने सिखलाया, और इसी आज जो भी हम कहने जा रहे हैं वो इनकी ही शिक्षाओं पर आधारित है। ये बहुत ब्राइट आ रहा है ना, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर दिखाई दे रहा है पीछे से? वो शायद उसका सेटिंग चेंज किया है किसी, उसका रिमोट कहाँ है? रिमोट ला। तो कई लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, अगर कर्म ही पूजा है तो फिर हर व्यक्ति जो कर्म करता है वो बहुत बड़ा पुजारी होना चाहिए, जैसे कि ये व्यक्ति। आप देखिए, कर्म तो बहुत, गधा भी बहुत सारे कार्य करता है ना, दिन भर कार्य करता है, बोझ ढोता है, तो क्या हम लोग उसे उसकी पूजा कहेंगे? जो कार्य गधा करता है, दिन भर मेहनत करना, दिन भर या तो कपड़े ढोना या कोई बहुत सारा बोझा ढोना, तो क्या ये कर्म उसकी पूजा है? अगर कर्म ही पूजा है तो फिर ये बहुत बड़ा पुजारी है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है, बहुत कर्म करता है। तो हमें जानना चाहिए कि दो शब्द हैं, कर्म और पूजा, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। हाँ ठीक है, बस वैसे उसमें एक और मोड है, मोड में जाके उसको ब्राइट मोड होता है, उसको नॉर्मल मोड कर, इधर ले आओ, मैं कर देता हूँ। अभी थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा सकते, थोड़ा कम। बस बस ठीक, नहीं रहने दो बस। तो अगर कर्म ही पूजा है तो फिर ये गधा सबसे बड़ा पुजारी होना चाहिए, क्योंकि दिन भर पूजा करता रहता है लोगों के अनुसार। तो जानिए कि कर्म और पूजा ये दो अलग अलग चीज हैं। कर्म अर्थात जो शरीर के स्तर पर किया जाता है, शरीर से जो कार्य किया जाता है, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। और पूजा ये दिव्य स्तर पर होती है। तो दोनों में अंतर है, एक केवल शरीर के लिए किया जाता है और दूसरा शरीर के लिए नहीं किया जाता। तो पूजा ये हमें भगवान से जोड़ती है। पूजा का अर्थ है भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, जो हमें भगवान से जोड़े। कार्य का अर्थ है कर्म, जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं। और पूजा अलग चीज है, पूजा का स्तर अलग है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में हम कार्य को पूजा बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं उसका हम लोग आज वर्णन सुनेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे कार्य होते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं और उनका आधार अलग अलग होता है। जैसे कुछ कार्य हम लोग करते हैं अपनी इच्छाओं पर आधारित होकर, हमारी इच्छा होती है इसलिए हम करते हैं। जैसे मान लीजिए जब वेकेशन होता है तो आप सब कहीं छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मैंने गोकर्ण नहीं देखा, मैंने उड़पी नहीं देखा, मैंने तिरुपति नहीं देखा, मैंने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, तो हम घूमने जाना चाहते हैं, वहाँ इच्छा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग केवल इच्छा पर करते हैं। तो सारे कर्म जो इच्छा पर किए जाते हैं अपनी इच्छा पर, वो पूजा नहीं है। और ये आप बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि कोई अगर छुट्टी मनाने, कहीं वेकेशन मनाने जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या वो पूजा कर रहे हैं? समुद्र में स्नान कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, क्या वो पूजा है? अगर नहीं तो हर कर्म पूजा नहीं है, ये बात जान लीजिए। अगर हर कर्म पूजा होता तो फिर ये लोग जो छुट्टी मनाने गए हैं, आनंद लेने गए हैं, समुद्र पर घूम रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं होटल में, तो ये सब भी पूजा वाले होते, पूजा करने वाले होते, लेकिन ये तो कोई पूजा नहीं है। तो इसीलिए सब कर्म पूजा नहीं होते हैं। तो कुछ कर्म हम करते हैं जो हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं, कुछ कर्म हम करते हैं जो केवल मनगढ़ंत चीजों से हम उसको बना लेते हैं, मन की कल्पना से। कुछ लोग सोचते हैं कि ये करना अच्छा है, वो करना अच्छा है, शराब पीना, सिगरेट पीना कोई गलती नहीं है, ये मन से कल्पना से बने हुए कार्य हैं। तो क्या ये पूजा हो सकते हैं? कोई व्यक्ति मान लीजिए शराब पीता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कितनी अच्छी पूजा कर रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक ग्लास पी रहा है, बहुत अच्छी पूजा कर रहा है, नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि हर कर्म पूजा नहीं है, ये जानना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, या कोई और कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो क्या वो पूजा है? कोई कह सकता है कि एक चोर का कार्य है चोरी करना, और जितनी अच्छी वो चोरी करेगा वही उसके लिए पूजा है। जैसे लोग कहते हैं जितनी अच्छी तरह से अपने कर्म करोगे वही पूजा है। तो क्या बहुत अच्छी चोरी करने वाला, बहुत अच्छा हत्या करने वाला, मर्डर करने वाला, क्या वो बहुत अच्छा पुजारी है? नहीं। तो इसीलिए ये जान लीजिए कि हर कर्म पूजा नहीं है। कुछ कार्य कर्तव्यों पर आधारित होते हैं, हम लोग कर्तव्य मानकर करते हैं। जैसे कुछ दान करना, किसी के पास कुछ कपड़े होते हैं, कुछ धन होता है, तो वो गरीबों में बांटते हैं, कोई खाना बांटते हैं, कोई कपड़े बांटते हैं, कोई धन बांटते हैं, ये सोचकर कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे पास है, ठीक है, मुझे देना चाहिए, तो ये भी वो कर्तव्य करते हैं। तो लेकिन क्या ये तो बहुत अच्छा कार्य है, तो क्या ये पूजा है? अगर किसी को, कोई भूखे को खाना खिलाते हैं, आपको कोई भिखारी मिल जाता है, उदाहरण देते हैं आपको, आप में से बहुत से लोग कोई तीर्थ स्थानों में गए होंगे, पवित्र स्थलों में, कई बार वहां पर आपको कोई आदमी मिल जाता है, वो आता है आपके पास, अच्छा दिखता है, अच्छे कपड़े पहने हैं, और आकर कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर आया था, मेरा पर्स चला गया, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया, मेरा बैग ले लिया, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो मेरे पास जाने का भी टिकट नहीं है, मैं बच्चे की दवाई लेने आया था, और लिस्ट दिखाएगा बच्चे की दवाई का, और अभी वो दवाई के लिए 500 रुपया चाहिए, और जाने के लिए मुझे एक 300 रुपया चाहिए, तो अगर आप 800 देंगे तो आपका बड़ा मेहरबानी होगी, मेरा बच्चा आपको दुआ देगा, भगवान की आपको कृपा मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। और आप सोचते हैं, अरे अरे बेचारा व्यक्ति, कितना उसके साथ गलत हुआ, उसका बच्चा मर रहा है, वो दवाई लेने आया, और किसने गलत कर दिया, तो आप कहते ठीक है 800 तो नहीं है, 300 रुपया है मेरे पास, वो आप रख लो। और आपको बड़ा अच्छा लगता है हृदय में, मैंने बहुत अच्छा अपना कर्तव्य किया, बड़ा अच्छा किया, उसको मदद की। और वो व्यक्ति जाकर उससे शराब पीता है, क्योंकि उसका तो ना कोई बच्चा है, ना बच्चा बीमार है, ना वो 500 किलोमीटर दूर से आया है, ये उसका रोज का काम है। क्योंकि तीर्थ स्थानों में रोज नए नए लोग आते हैं, एक ही व्यक्ति नहीं रहते हैं, इसलिए वो रोज नए नए लोगों से पैसा मांगता है, जो भी पैसा मिलता है शाम को जाके शराब पीता है, गलत काम करता है। और क्योंकि आप उसमें मदद करते हैं उसको गलत काम करने में, तो क्या ऐसा कर्म पूजा होता है? क्या इसको पूजा कहा जा सकता है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, वो जाके शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, और आप सोच रहे हैं मैंने बहुत अच्छा किया? तो इसलिए हर कार्य, चाहे वो इच्छा से किया गया हो, कर्तव्य के लिए किया गया हो, या फिर ऐसा भी कोई कार्य जो जीविका के लिए किया गया हो, जीवन जीने के लिए, ये सारे पूजा नहीं हो सकते। अभी देखिए, व्यक्ति को पेट भरना होता है ना, हिंदी में कहते हैं पापी पेट का सवाल है, तो पेट भरने के लिए उसको कुछ काम करना होता है, या तो ऑफिस में बैठ के काम करे, या सड़क पे काम करे, कोई भी काम करे, लेकिन काम करना होता है। तो अब ये काम करने में उसकी कोई, उसको कोई प्रेम नहीं है काम करने से, केवल वो पेट भरने के लिए करना चाहता है, तो क्या ये पूजा है उसके लिए? जैसे आप देख रहे हो यहां पर बैठे ऑफिस में आदमी परेशान हो रहा है, क्या ये पूजा कर रहा है? उद्देश्य सही नहीं है, इसीलिए ये पूजा नहीं है। जैसे कभी कभी आप एग्जाम देते हो, आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज जाते हो, अगर कॉलेज जाने का उद्देश्य एक ही है, अच्छे मार्क्स लाना बस, तो वो सही उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान लेना चाहिए, कॉलेज जाकर कुछ सीखना चाहिए, केवल अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो वो सही नहीं है। इसी तरह केवल धन कमाने के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो कोई सही कार्य नहीं है, वो तो केवल जीविका के लिए किया गया है, वो पूजा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए चाहे हमारी इच्छा पर आधारित हो, चाहे हमारे कर्तव्य पर हो, चाहे हमारे जीविका के लिए हो, ये सारे कार्य भक्ति या पूजा नहीं हो सकते। तो इस चीज को जानिए, हर कार्य पूजा नहीं है। जो भी कोई, चाहे कोई हत्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, करप्शन, क्या वो सब पूजा है? वो कहेगा मैं अपना कार्य अच्छे से कर रहा हूं, मैं इतना अच्छा रिश्वत लेता हूं कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, आज तक 15 साल हो गए रिश्वत लेते हुए, किसी ने मुझे नहीं पकड़ा, पूजा हो गई उसकी। तो इसीलिए हर कार्य पूजा नहीं है, कार्य कार्य है, पूजा पूजा है। अब पूजा भी जब व्यक्ति करता है तो वो भी कुछ कारणों से करता है, पूजा में भी अंतर है। कभी कभी हम लोग पूजा करते हैं भय के कारण, डर से पूजा करते हैं, अगर मंदिर नहीं गया तो कुछ हो जाएगा, है ना, डर रहता है, अगर तिलक नहीं लगाया तो कुछ हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनका नियम होता है कि सुबह मंदिर में जाना है, बस भगवान के सामने कान पकड़ना है, और जिस दिन नहीं पकड़ा उनको लगता है आज कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आज मैं मंदिर नहीं गया। ये डर है, डर से भक्ति नहीं होती है। या फिर जैसे लोग गणपति लाते हैं, ये डर डर पैदा करते हैं। बंबई में ये बहुत नियम है गणेश जी को लाना, उनकी पूजा करना 11 दिन तक, और वहां पर अगर कोई व्यक्ति लाता है और 1-2 साल बाद उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बंद करना है, तो उसको डराया जाता है, नहीं 11 साल तक लाना ही पड़ेगा, ये नियम है। उनको आज तक किसी ने नहीं पूछा कि कौन से शास्त्र में ये नियम लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं है। आपको अपना कथा बताते, हम जब छोटे थे हमारे घर में गणपति नहीं आता था, हम उत्तर भारत से हैं, लेकिन हम लोग बॉम्बे में बड़े हुए, तो हमारे बहुत सारे मित्रों के घर में गणपति लाते थे, हम छोटे थे स्कूल में, हमने भी जाकर अपने पिताजी से कहा हम भी गणपति लाएंगे। पिताजी ने कहा हम लोग नहीं लाते हैं, ये हमारा नहीं है ट्रेडिशन। नहीं नहीं हम भी लाएंगे। ठीक है लाना, तुम ही पूजा करना। हाँ हम करेंगे, बहुत शौक था, छोटे से थे तो बड़ा शौक होता है। हाँ हम करेंगे। पहले साल लेकर आए और वो भी 11 दिन पूरे, और सुबह शाम आरती करना। घर वाले खड़े होते थे लेकिन पिताजी ने कहा था कोई करेगा नहीं, तुम्हें अकेला करना। और रोज सुबह शाम किया। पहला साल बहुत अच्छा लगा, लेकर भी आए, विसर्जन करने भी गए। दूसरे साल थोड़ा सा कम हो गया उत्साह कि लाना ले जाना। तीसरे साल बिल्कुल इच्छा नहीं थी करने की, तो हमने फिर कुछ अपने मित्र थे इत्यादि उनसे कहा कि हम ऐसे ला रहे हैं लेकिन अब सोच रहे अगले साल नहीं लाएंगे। तो जैसे ही किसी ने सुना हाँ एक बार लाए तो 11 साल तक लाना चाहिए, हमने कहा अरे गड़बड़ हो गया अब 11 साल तक। तो हमने जाकर अपने पिताजी को बोला कि अगले साल नहीं लाएंगे। तो पिताजी को भी किसी ने कह दिया था कि एक बार शुरू किया तो 11 साल तक लाना था। पिताजी ने कहा मालूम नहीं, एक बार लाए तो 11 साल तक लाना पड़ता है। इतना डर और हमें बहुत चिंता हो गई, अरे बाप रे 11 साल तक हर साल लाओ, पूजा करो, लेके जाओ। खैर हमने बंद कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। मगर ये एक बात है कि लोग डर इतना उत्पन्न कर देते हैं हृदय में पूजा के लिए भी कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक स्थान है शनि शिंगणापुर, आप लोग गए हैं शिरडी के पास? शिरडी कितने लोग गए हैं महाराष्ट्र में? शिरडी गए हो आप? ओके। तो शिरडी के पास एक स्थान है, शनि देव का मंदिर है। हम जब स्कूल में थे तब हम वहाँ गए थे एक बार, एक या दो बार। तो जब पहली बार गए थे तो वहाँ पर हम लोग 3-4 मित्र थे स्कूल के, हम लोग गए थे और शिरडी गए थे, शिरडी से फिर वहाँ गए। तो वहाँ पर जब गए तो किसी ने पहले से बताया था कि वहाँ चोरी नहीं होती है शनि शिंगणापुर में, पूरे एरिया में एक ऐसा गाँव है उसमें एक बार अंदर घुस गए तो वहाँ कहीं नहीं। तो हम लोग जब गए तो हम लोग 4-5 फ्रेंड्स थे, सबके पास किसी के गले में सोने की चेन घड़ी ये सब था, हम लोग का उस समय पैसा पर्स। तो हम लोग कार में गए थे तो जो ड्राइवर लेकर गया था उसने कहा कि यहाँ ये नियम है कि आपको नहा करवा, नदी है नहाइए और गीले कपड़े पहनकर ही दर्शन के लिए जाना है शनि देव के। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग सब नहाने चले गए। लेकिन नहाने जा रहे थे तो सब कपड़े उतारना है तो सबके पास चेन और ये वो सब रखना और पर्स। तो हमने कहा कि ये कहाँ रखें, चलो अंदर कहीं लॉक करें, गाड़ी बंद करें। तो उसने कहा नहीं नहीं यहीं पत्थर पे रख दो बाहर ओपन। हम लोगों का दिल नहीं हुआ कि कैसे पत्थर पर रख कर जाए, पैसा है, सोना है, घड़ी है, अगर कुछ हो गया तो घर पर जाके पिताजी डांटेंगे कहाँ गई। हाँ लेकिन उसने कहा नहीं नहीं रख दीजिए। फिर जब हम लोगों ने मना किया नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रखेंगे अंदर रखेंगे, तो उसको इतना गुस्सा आ गया उसने कहा आप यहाँ रख दीजिए, अगर एक भी चीज आपकी गई तो मैं दूंगा आपको, मैं पैसा दूंगा। हम लोगों ने सोचा इतना कह रहा है तो फिर जाना चाहिए। तो हमने सब पत्थर पे रख दिया वहीं पे बाहर जहाँ नहाने गए। नहाने गए, नहाने के बाद दर्शन करके पूरा गाँव घूम के 2-3 घंटे बाद वापस आए, जो हमारा सामान वैसे का वैसे ही था, कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया था। और हम लोग जब घूम रहे थे गांव में तो देखा किसी गांव में दरवाजे नहीं थे, घर में किसी दरवाजे नहीं। गोडाउन्स थे बड़े बड़े गोडाउन जिसमें सामान रखा हुआ था लेकिन कोई दरवाजा नहीं, किसी घर में दरवाजा नहीं, ऐसे ही ओपन सब। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हमने उनसे वहाँ के लोगों से पूछना शुरू किया क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है शिंगणापुर, ये पूरा गाँव, इसमें अगर कोई चोरी करता है तो वो इस गांव के बाहर नहीं जा सकता, पागल हो जाता है या मर जाता है। तो हम लोगों ने उनसे कहा, उस समय हमने उनसे कहा था कि अगर आप लोग इतना डराओगे तो कौन चोरी करेगा, आपने इतना डरा के रखा है कि यहां पर कोई करेगा तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा, ये होगा वो होगा, इतना डरा के रखे तो कौन चोरी करना चाहेगा। आदमी सोचेगा अरे हाँ हो सकता है कुछ हो जाए, रहने दो चोरी नहीं करते। तो ये डर है, तो कभी कभी व्यक्ति पूजा डर से करता है कि अरे अरे भवानी देवी मेरी कुल देवी हैं, अगर उनकी पूजा नहीं करूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, धन चला जाएगा, ये सब डर पैदा करते हैं। तो पूजा हमें डर से नहीं करनी चाहिए, डर के कि अगर हमने पूजा नहीं की तो कुछ हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने भी ऐसा घर में बहुत सुना होगा, कभी कभी बोलते हैं ये करना ही चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए एक हम लोग कार्य करते हैं अलग अलग कारणों से, इच्छा से, मन के कल्पना से, कर्तव्य मानकर या जीविका के लिए, और दूसरी ओर पूजा करते हैं तो पूजा भी करते हैं तो किन्हीं कारणों से, एक डर से, सबसे महत्वपूर्ण कारण, लोग बहुत डरते हैं कुछ हो जाएगा, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण इच्छाएं, कुछ धन चाहिए, कोई और चीज चाहिए, सोना चाहिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो इच्छाएं, इसीलिए हम पूजा करते हैं ना, मंदिर जाते हैं ताकि कुछ तो मिल जाए, अगर कुछ मिले नहीं तो कहते ये बेकार मंदिर है, यहाँ जाके कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अगर किसी मंदिर में जाकर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो हाँ, ये जागृत देवस्थान, भगवान असल में यहाँ पर है, बाकी जगह। इसीलिए कभी कभी लोग एक मंदिर जाते बस उसी में जाते हैं, क्यों, वहां जाने से मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो गया। एक बार एक व्यक्ति ने हमें कहा था कि मैं ये मंदिर जाना कभी जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, तो हमने पूछा क्यों, ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा जिस दिन से मैंने यहाँ शुरू किया जाना, मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो गया, पैसा बहुत आ रहा। तो जब तक पैसा आ रहा है मंदिर जाएंगे, जिस दिन बंद हो गया तो मंदिर जाना भी बंद कर देंगे, अरे भगवान सो गए अभी दूसरे मंदिर में जाएंगे। इसीलिए बंबई में कई मंदिरों को या महाराष्ट्र में जागृत देवस्थान कहते हैं। जागृत देवस्थान मतलब वो देवस्थान, वो भगवान का स्थान जो जागृत है। जागृत है मतलब जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बाकी सब सोए हुए हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। तो इसीलिए लोग इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं या देवी देवताओं के पास जाते हैं ताकि कुछ इच्छा पूरी हो जाए। बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना, किसी को धन की इच्छा होती है, वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है बस। आपने देखा होगा दीपावली के दिन हर जगह लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, इसीलिए वो फोटोज भी आप देखो तो वो लक्ष्मी जी हाथ से वो सारा सोना आ रहा है ना, ये हमेशा फोटो रहती है। कभी लक्ष्मी को भगवान की शक्ति मानकर पूजा नहीं, बस दान मिलना चाहिए, धन धन धन, देखो यहाँ भी सब सोना गिर रहा है, वही है बस। तो एक ही इच्छा, लक्ष्मी की पूजा मतलब धन। कभी कभी लोग शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, हर सोमवार को बड़े नियम से कुछ पानी चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते हैं, और उद्देश्य क्या है, जाकर कुछ इच्छा प्रकट करते हैं, शिव जी बहुत समय हो गया, अभी उम्र भी हो गई, थोड़ा एक लड़की नहीं मिल रही है अच्छी, शादी करना चाहता हूँ, थोड़ा एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के दे दो। अब शिव जी बेचारे अपना जप करें या आपके लिए लड़की ढूंढने लगेंगे, ऐसा लगता मानो शिव जी ने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है, और कोई लड़के आते हैं वो कहते हैं हमें चाहिए अच्छा पत्नी, कोई लड़कियां आती हैं वो कहती हैं हमें अच्छे पति चाहिए, अब बेचारे शिव जी दिन भर वो मैच करते रहते हैं, अरे कहाँ किसको देना है। तो ये इच्छा पर आधारित पूजा करते हैं हम लोग, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन की पूर्ति के लिए, व्यापार अच्छा होने के लिए, या फिर विवाह के लिए, या फिर कुछ और चीज़ों के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए, है ना। आप सब भी जाते होंगे एग्जाम के पहले, कोई जो कॉलेज के पास मंदिर है बस उसमें जाना, सर झुकाना, है ना, लोग बहुत करते हैं। हम कई बार कहते हैं बंबई में एक मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर, तो वहाँ पर हम जब पहली बार गए थे, वहाँ जब हम स्कूल में थे, गणेश जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है सिद्धि विनायक मंदिर बंबई में, लोग रात रात को उठकर घर से पैदल चलकर जाते हैं हर मंगलवार को, वहाँ पर रात को 12 बजे उठ के घर से चलना शुरू करते हैं ताकि सुबह पहुँच जाए मंदिर। और अच्छे अच्छे लोग, हमने सुना अमिताभ बच्चन भी पैदल चलकर जाते हैं कभी कभी वहां पर, तो वो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो उस मंदिर के बाहर नारियल बिकते हैं और वो नारियल बंधे हुए हैं, ऐसे नहीं है एक दो तीन चार, ऐसे कि 5 नारियल 7 नारियल 21 नारियल 11 नारियल ऐसे बंधे बंधे रहते हैं। तो जब पहली बार हम गए थे, हमने कभी ऐसे देखा नहीं था कि कहीं पे नारियल रस्सी से बांध रखे हैं, ऐसे लटके रहते हैं 1 2 3 4 5 लाइन्स। तो हमने दुकान वालों से पूछा कि क्या है ये, क्यों ऐसे टांग रखे हैं? तो उन्होंने कहा लोग यहाँ आते हैं, वो इच्छा प्रकट करते हैं और भगवान से कहते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो आपको इतने नारियल चढ़ाऊंगा। तो हम सोच रहे थे कि कोई विद्यार्थी आता होगा और वो विद्यार्थी बोलता होगा कि हे सिद्धि विनायक, हे गणेश जी, अभी मेरा एग्जाम आने वाला है, अगर एग्जाम में 60% के ऊपर मार्क्स आए तो 5 नारियल, 70 के ऊपर आए तो 11 नारियल, गलती से 80 के ऊपर आ गए तो फिर 21 नारियल, और अगर फेल हो गया तो यही नारियल तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। ये व्यापार है ना, ये कोई भक्त पूजा है, उनको बोलना अच्छा ये होगा तो इतना, ये यानी आप मुझे इतना दोगे तो मैं आपको उतना दूंगा, ये व्यापार है। तो इसीलिए भगवान के साथ या देवी देवताओं के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी पूजा हम लोग करते हैं इच्छा पर आधारित, कुछ धन पाने की कामना, अच्छे मार्क्स पाने की कामना, या फिर कोई और चीज की कामना, तो ये भी होता है। और एक कारण है हमारा पूजा करने का, और वो है कर्तव्य। हम अपना कर्तव्य मानकर पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी पूरा जीवन इस मंदिर जाया करते थे, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि मुझे जाना है, बस कोई और ये नहीं। ठीक है, इच्छा से नहीं जाते, कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है बस, इसलिए चले जाते। या फिर कोई किसी ने कहा कि वह मंदिर जाना चाहिए तुम्हें, तो चलो ठीक है मंदिर चलेगा, बस इतना है। तो कुछ लोग कर्तव्य मानकर करते हैं पूजा, कि ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे पूजा कर लेनी चाहिए। तो कुछ लोग करते हैं भय से, डर से, जैसे हमने उदाहरण दिया गणेश जी की पूजा 11 साल तक करना ही करना है। कुछ लोग करते हैं इच्छा के लिए, कुछ पाने के लिए लिस्ट लेके जाते हैं बहुत लंबी भगवान के पास, ये चाहिए वो चाहिए। आप भी सब जाते होंगे, यही करते होंगे ना मंदिर में, कम से कम ये तो मिल जाए वो मिल जाए। और कुछ लोग कर्तव्य से, लेकिन ये सारी पूजाएं ये सही नहीं है, ये भाव सही नहीं है। असली पूजा है जो प्रेम से की जाती है, अर्थात हम भगवान को प्रेम करते हैं इसीलिए उनकी पूजा करते हैं, ये सही भाव है, ये सही पूजा है, ये असली पूजा है। ऐसा कर्म जो भगवान के लिए किया जाए वो सही दृष्टि में पूजा है। तो इसीलिए हमें अगर पूजा करनी है तो डर से नहीं, केवल इच्छाओं के लिए नहीं, केवल एक कर्तव्य मानकर नहीं, प्रेम से करनी चाहिए, कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि जहां भगवान से प्रेम होता है वहां संबंध बनता है, नहीं तो केवल व्यापार हो जाता है। हम केवल व्यापार करते हैं कि आप मुझे इतना दोगे तो मैं आपको उतना दूंगा, नहीं तो आपका सर फोड़ दूंगा। कई बार ऐसा होता है, ये प्रेम नहीं है। कभी कभी तो मंदिर में लोग चोरी करने जाते हैं, मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं, जाते हैं कि मंदिर में कुछ चोर कुछ मिल जाए उठा के ले जाए। भीड़ होती है, उत्सव होते हैं, तो वहां आकर सब गलत काम करना, तो लोगों को बिल्कुल डर नहीं है भगवान से, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चोरी करने लगे। जब आप तिरुपति जाते हो तो तिरुपति में बहुत भीड़ होती है, और अगर आपकी जेब में थोड़ा भी पैसा है तो आप दर्शन करने के लिए मंदिर में घुसोगे, दर्शन करके बाहर आओगे, पैसा गायब। आप जेब में हाथ डालोगे कि चलो कुछ हुंडी में डाल दे, लेकिन वो पहले ही निकल जाता है। बहुत वहां पर ऐसे है। ऐसे बताते हैं कि बालाजी के यहाँ एक दिन, शायद बुधवार के दिन, बालाजी की आंखें खुलती हैं। जो तिलक है, वैसे आपने बालाजी की फोटो देखी है, वो तिलक आंखों तक पूरा कवर रहता है, नाक तक, लेकिन एक दिन आंखें खुली होती हैं। और जिस दिन आंखें खुली होती हैं उस दिन तिरुपति में बहुत सारे चोर पकड़े जाते हैं। ये आज भी होता है, पुलिस वालों ने रिकॉर्ड किया है कि उस दिन बहुत सारे चोर पकड़े जाते हैं। तो कभी कभी लोग चोरी करने भी चले जाते हैं। तो देखिए, मंदिर ये सब पूजा नहीं है। अगर आप पूजा केवल भय से कर रहे हो तो वो भी पूजा नहीं है। अगर आप कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हो तो वो भी पूजा नहीं है। कैसे हो सकती है वो पूजा? इसका अर्थ है कि आप करना नहीं चाहते हो, डरते हो, लेकिन केवल बस कुछ पाने के लिए, कुछ भय से कर रहे हैं। असली पूजा है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये असली पूजा है। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि प्रेम की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें भगवान से प्रेम करना है, क्यों हम केवल भगवान से मांग कर नहीं सुखी रह सकते। इसका कारण ये है कि हम सब आध्यात्मिक जीव हैं, आत्मा है। हम कोई भौतिक शरीर नहीं है। अगर भौतिक शरीर होते तो शरीर के लिए किया गया कार्य पूजा होता, लेकिन क्योंकि हम लोग कोई भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक जीव है, तो इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पर किया गया कार्य वो पूजा होता है। यहां इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे, इस चित्र में देखिए कि बच्चा है, छोटा से बड़े होते हैं, जीवन है हमारा, फिर मर जाता है, फिर से जन्म लेता है बालक। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक स्पार्क, एक स्फुलिंग बीच में दिखाई दे रहा है। आत्मा वही रहती है। जैसे आप सब अपने बचपन का चित्र देखें, जब आप 3 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल के थे, तो आप पहचान लेंगे, हाँ ये मैं हूं। लेकिन अभी आपका चेहरा वैसा नहीं है, अभी बदल गया है, मगर आप वही हैं, आप नहीं बदले। आप बदल गए हैं क्या? शरीर के साथ साथ 10 साल में कोई और था अंदर, अभी कोई और आ गया। आप वही हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं कि जैसे इस जीवन में हम देखते हैं कि शरीर बदलता है। आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिया है कि हमारा शरीर हर 7 साल में बदल जाता है। एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है हमारे शरीर में आज जो 7 साल पहले था। मतलब हर 7 साल में शरीर बदल रहा है। तो वैज्ञानिक सोचते हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ा संशोधन किया। हाँ किया, लेकिन उस बात को पहले ही श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कह दिया, देहिनोस्मिन यथा देहे, कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा के रूप में हमारा संबंध है भगवान से, जिसको हम भूले हुए हैं। तो इसलिए जानिए कि आत्मा और शरीर में अंतर है। हमारे, हम जो बाहरी देख रहे हैं केवल शरीर है, इसके अंदर आत्मा है। तो सही कार्य वो होगा जो आत्मा के स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि जो शरीर है ये तो बदलते रहते हैं। आत्मा अलग अलग शरीरों को धारण करती है। जैसे आप यहां पर चित्र देख रहे हैं, कभी पशु शरीर में जाती है, कभी पक्षियों के शरीर में जाती है, कभी मनुष्य शरीर में आती है। ये सब कर्म के अनुसार, कार्य के अनुसार होता है। इसीलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि कैसे कार्य करने हैं हमें। कोई भी कार्य करके उसको पूजा कह के हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए जानना चाहिए कि कौन से कार्य हमें करने हैं। तो आत्मा अलग अलग शरीर लेती है, इसीलिए आत्मा के स्तर पर किया गया कार्य वो पूजा कहला सकता है। वैसे हम सब एक ऐसे बालक की तरह हैं जो खो गया है, बहुत करोड़पति व्यक्ति का बालक है लेकिन खो गया। ही इज अ लॉस्ट सन, वी आर लाइक लॉस्ट सन ऑफ अ मिलियनेयर। जब बालक खो जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए सड़क पर खड़ा हुआ रो रहा है जोर जोर से, तो बालक रो रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, कोई जाकर उसको खाना देता है, बालक खाता है फिर रोता है, कोई जाके उसको कपड़ा देता है, बालक पहन लेता है फिर रोता है। तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम आपको उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति आता है देखता है बालक रो रहा है बहुत, तो थोड़ा उसको खाने को दे देता है, दूसरा व्यक्ति आकर कपड़े दे देता है, तीसरा व्यक्ति आके कुछ पैसे दे देता है, रो रहा है चलो एक 2 रुपया रख लो। लेकिन एक चौथा व्यक्ति आता है जो बड़ा बुद्धिमान है, वो देखता है कि लड़का रो रहा है, वो ढूंढता है कौन है इसके पिता, और फिर उसको ले जाकर पिता के पास देता है, और पिता तो करोड़पति है, तो जब पिता के पास बालक पहुंचता है तो उसको सब मिल जाता है, खाने को भी मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, रहने को भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है। तो इन चारों व्यक्तियों में से सबसे अच्छा काम किसने किया बताइए आप लोग, हाँ थोड़ा जोर से। पहले व्यक्ति ने जिसने खाना दिया उसने अच्छा किया, या दूसरा जिसने कपड़ा दिया उसने अच्छा किया, तीसरा जिसने पैसा दिया उसने अच्छा किया, या चौथा जो उसको पिता के पास ले गया, किसने अच्छा किया, हाँ चौथा जिसने उसको उसके पिता से मिला दिया, सही है। तो सबसे अच्छा काम उसका हुआ। इसी तरह इस जगत में हमने बताया कि हम सब आत्मा हैं, और आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं, तो हम उस बालक की तरह हैं जो अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण से अलग हो गया है। अब उसको कोई आकर इस जगत में खाना खिलाता है, जैसे कई लोग भूखों को खाना खिलाते हैं, हमने अभी थोड़े समय पहले देखा इस स्लाइड में, कोई भूखों को खाना खिलाते हैं, कोई कपड़ा बांटते हैं, कोई धन दे देते हैं गरीबों को, और कोई उनको भगवान की शरण में लाते हैं, उनको भगवान के पास लाते हैं, उनके खोए हुए पिता के पास लाते हैं। तो आप बताइए, चार प्रकार के लोग हैं, एक जो गरीबों में कपड़ा बांटते हैं, दूसरे जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, तीसरे जो गरीबों को धन दे देते हैं, और चौथे जो न केवल गरीबों को सबको भगवान से जोड़ते हैं। तो चारों में से कौन से अच्छे हैं, पहला दूसरा तीसरा कि चौथा, हाँ चौथा, क्योंकि जैसे बालक को पिता के पास ले जाने से सब कुछ प्राप्त होता है, इसी तरह जब हम भगवान के निकट आते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकते हैं और हमारा उनसे संबंध है, और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान से संबंधित कार्य करें। चौथा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मानवता का परम धर्म वह है जिसके द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त किया जा सके। इसका अर्थ क्या है, बहुत सारे कर्तव्य हमारे जीवन में हो सकते हैं, हो सकता है कि हमें लगे कि ये कर्तव्य महत्वपूर्ण है, वो कर्तव्य, हाँ सब कर्तव्य करने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है भगवान की प्रेममयी सेवा, उसको प्राप्त करना। तो जब व्यक्ति वो कर लेता है, अपने आप को भगवान से जोड़ता है, तब वो व्यक्ति सही दृष्टि में पूजा कर रहा है। तो इसीलिए हम सबको कला सीखनी चाहिए। कौन सी कला? अपने कार्य को पूजा बनाने की। लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग योर वर्क एज वर्शिप। हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने कार्यों को पूजा बना सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में देखा, सभी कार्य पूजा नहीं है। कुछ कार्य इच्छा से हम लोग करते हैं, कुछ मन की कल्पना से करते हैं, कुछ कर्तव्य मानकर करते हैं, कुछ जीवन चलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सारे पूजा नहीं है। लेकिन कार्यों को पूजा बनाया जा सकता है। सब कार्य पूजा नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, क्षत्रिय थे, उन्हें युद्ध करना था, और दुर्योधन भी युद्ध कर रहे थे, वो भी क्षत्रिय थे, उन्हें भी युद्ध करना था। तो दुर्योधन भी अपना कर्तव्य कर रहे थे और अर्जुन भी अपना कर्तव्य कर रहे थे। कर्ण भी अपना कर्तव्य कर रहे थे, युधिष्ठिर भी अपना कर्तव्य कर रहे थे। यहां पर द्रोणाचार्य इत्यादि वो भी अपना कर्तव्य कर रहे थे, भीम भी अपना कर्तव्य कर रहे थे। तो दोनों में अंतर क्या था? क्या हम कहेंगे कि दुर्योधन जो कर रहा था वो पूजा थी? लेकिन हम लोग, हम ही नहीं, सारे शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, अर्जुन जो कर रहा था वो पूजा थी। आप सोचिए, अर्जुन मार रहा था, लोगों की हत्याएं कर रहा था, कैसे ये पूजा हो गई? इसी चीज को हमें समझना है कि हमारे कार्य, चाहे हम पढ़ रहे हों, कार्य कर रहे हों, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता ये नहीं सिखलाती कि जो भी कर रहे हो सब छोड़ दो, विद्यार्थी हो पढ़ाई छोड़ दो, घर में रह रहे हो छोड़ दो, ये नहीं सिखाती। ये उल्टा सिखाती है भगवत गीता। अर्जुन छोड़कर भागना चाहता था, अर्जुन चाहता था कि मैं युद्ध से पलायन कर दूं, मैं युद्ध नहीं करूं। कृष्ण को कह रहा था, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा नहीं, युद्ध करो, कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य को छोड़कर भागो नहीं। ये भगवत गीता का संदेश है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवत गीता पढ़ने से सब कुछ छोड़ना होगा। भगवत गीता पढ़ने से उन्हीं कार्यों को कैसे पूजा के रूप में करना है ये सीखना होगा। जैसे अर्जुन ने सीखा, अर्जुन ने वही कार्य किया बाद में जो वो करता था, युद्ध करना, लेकिन फिर वो पूजा हो गया। तो इसीलिए हमें ये कला सीखनी चाहिए कि कैसे हम अपने कार्यों को पूजा बना सकते हैं, आध्यात्मिक बना सकते हैं। ये आवश्यकता है सीखने की, नहीं तो हम दुर्योधन की तरह हो जाएंगे। कार्य करेंगे, कर्तव्य करेंगे, लेकिन वो पूजा नहीं होगा। महाभारत में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोग सुन सकते हैं कि किस प्रकार किसने पूजा की और किसने नहीं की। तो सारे कर्तव्य पूजा नहीं है। तो इसीलिए हमें कला सीखनी चाहिए। तो कला सीखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने कार्यों को पूजा बना सकते हैं? तो हमारे कार्य पूजा तब बनते हैं जब, पहली चीज, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित हो। क्योंकि पूजा करना शास्त्रों में सिखाया गया है। पूजा करना केमिस्ट्री की बुक्स, इंजीनियरिंग की बुक्स, ENC, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस में नहीं सिखाया गया। सिखाया गया? आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, ENC डिपार्टमेंट है और उसमें कोई आकर सिखाते हैं, ठीक है आपको कैसे पूजा करनी चाहिए? नहीं, ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो आपको केमिस्ट्री की बुक्स में जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग सीखना है तो इंजीनियरिंग की बुक्स लेनी पड़ती हैं। मेडिकल सीखना है तो मेडिकल की बुक लेनी पड़ती है। इसी तरह भगवान की पूजा सीखनी है तो शास्त्र लेने पड़ते हैं। सरल है। आप दूसरी कोई किताब लेकर, तो किसी व्यक्ति ने ऐसे ही कुछ लिख दिया, उसको मानकर हम पूजा नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, अगर हमें कार्यों को पूजा बनाना है, तो वो ये है कि हम शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित कार्य को करें, जो शास्त्र कहते हैं उस कार्य को करें। दूसरा, वो कार्य भी हमें अपने मन से नहीं करने चाहिए, उसके लिए मार्ग निर्देशन होना चाहिए एक आध्यात्मिक गुरु का, एक शिक्षक का, एक मार्गदर्शक का, जो हमें सिखलाए कि हाँ शास्त्र ये कहता है और उस शास्त्र को आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तो शास्त्र भगवद गीता आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आचार्य समझाते हैं कि इसको अपने जीवन में कैसे उतारना। तो ये दूसरी चीज कार्य को पूजा बनाने के लिए, पहला चीज शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, दूसरी चीज वो हमेशा एक आध्यात्मिक शिक्षक के द्वारा निर्देशित होना चाहिए, अर्थात हमें कोई सिखाने वाला होना चाहिए। जैसे आप कॉलेज जाते हो, क्यों जाते हो कॉलेज, टेक्स्ट बुक खरीद के खुद नहीं पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, एक शिक्षक चाहिए जो सिखलाता है क्या टेक्स्ट बुक्स में लिखा है, इसी तरह क्या शास्त्रों में लिखा है, ये एक आध्यात्मिक गुरु सिखलाते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। और तीसरा कार्य, जो भी हम कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो कोई भी कार्य पूजा हो सकता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वो क्यों पूजा हुआ अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन ने शास्त्र के अनुसार किया, अर्जुन को निर्देश मिला उनके गुरु श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया। वो अपने लिए नहीं करना चाहते थे, जमीन के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, राज्य के लिए युद्ध नहीं किया, केवल कृष्ण की इच्छा थी इसीलिए उन्होंने युद्ध किया। तो वो युद्ध भी पूजा हो गया, वो कर्म पूजा है जो शास्त्र के अनुसार किया गया हो, एक आध्यात्मिक शिक्षक के मार्ग निर्देशन में किया गया हो और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये तीन चीजें। तो आप जो भी कर्म करें आपको ये देखना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं या नहीं। जैसे पढ़ाई भी, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में आप सोच सकते कहां हम कहां शास्त्र ढूंढे, कहां गुरु ढूंढे, कहां कृष्ण की प्रसन्नता, हमें तो मशीन और नट बोल्ट्स का काम करना है। नहीं, पहली चीज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, अर्थात अगर आप पढ़ाई का उद्देश्य सही रख रहे हो, आपकी पढ़ाई का उद्देश्य एक हो सकता है धन कमाना, एक हो सकता है कोई अच्छी जॉब मिल गया है जिसके कारण परिवार अच्छा चले इत्यादि इत्यादि, या फिर नाम कमाना कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाऊंगा, ये पढ़ाई का उद्देश्य। लेकिन इससे बड़ा एक उद्देश्य हो सकता है जो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप इंजीनियर हो तो अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से प्रूव करो कि कृष्ण सबसे बड़े इंजीनियर है, ये पूजा हो जाएगी आपके लिए पढ़ाई करना। अगर आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर अपनी पढ़ाई से प्रूव करो कि कृष्ण सबसे बड़े डॉक्टर है। और ये सरल है जानना, हमारी क्या इंजीनियरिंग है, एक एयरप्लेन बनाने में कितना समय चला जाता, करोड़ों रुपए लग जाते हैं और फिर वो क्रैश हो जाता है ना, एक एयरप्लेन। भगवान ने इतने सारे बनाए, देखो मच्छर घूम रहे हैं यहां पे, भगवान के द्वारा बनाए गए प्लेन है वो, कभी क्रैश नहीं होते। देखा आपने एक मच्छर दूसरे से क्रैश हो गया, तड़ाक दोनों गिर गए, अरे अरे ट्रैफिक कंट्रोल ठीक नहीं था, कुछ नहीं होता। इतने सारे मच्छर घूमते हैं और कौन सी मशीन लगी है उसमें, देखो आप जरा, है क्या उसमें, ऐसे पकड़ो तो खत्म हो जाता है, कौन सी मशीन है क्या है, लेकिन उड़ रहे हैं। ये भगवान के, भगवान ने उड़ा रहा है उनको। इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, आप लोग तो जानते होंगे ना, प्लैनेट्स का स्टडी थोड़ा तो किया होगा, कितने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं इस यूनिवर्स में, कौन उन्हें चला रहा है, अपने आप चल रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, सही दिशा में चलते हैं, कभी चेंज नहीं होते। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, वैसे ही घूम रही है तब से, सालों से, ऐसा नहीं हो गया कि घूमते घूमते थक गई, गिर गई, फिर उठ गई। हाँ, कौन चला रहा है उन्हें, कोई तो चला रहा होगा, कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा, किसी ने तो नियम बनाए होंगे, किसी ने उन प्लैनेट्स को बनाया होगा। सब कुछ अपने आप तो नहीं आता है, बाय चांस या बिग बैंग, पढ़ा आप लोगों ने बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी कहती है कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और फिर धीरे 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 सब कुछ प्रकट हो गया। अब देखिए, हम लोग यहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं बड़ा भगवान का, तो अब उनके अनुसार हमें बहुत बड़ा बम लाना चाहिए, बहुत बड़ा बम यहां पर ला के रखना चाहिए।
और उसको लगाकर भाग जाना चाहिए। जोर से धमाका होगा, धुआं, और फिर जब धुआं छट जाएगा तो उसमें से बड़ा सुंदर मंदिर प्रकट हो जाएगा। यस, हो सकता है? नहीं, क्यों? इतना बड़ा यूनिवर्स आ सकता है तो बैंक से तो केवल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए जो हमें सही चीज है उनको स्वीकार करना, तो शास्त्र के तो हमें अपने ज्ञान से दिखलाना चाहिए कि देखो ये प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं, कभी एक दूसरे से क्रैश नहीं होते, सीजन्स आते हैं, यू नो अभी गर्मी है, बाद में हमें अभी से पता है कि जून में बारिश आएगी हर साल, राइट समय पर सीजन सब चलते, बारिश आती है फिर ठंड आती है फिर गर्मी आती है, सब हो रहा है, सारे सीजन आ रहे हैं, कौन चला रहा है? कोई तो होगा। तो इसीलिए अपने ज्ञान से हमें ये प्रमाण देना चाहिए लोगों को कि भगवान कितने बड़े इंजीनियर हैं, उनकी इंजीनियरिंग देखो कितनी बढ़िया है, हम लोग क्या इंजीनियरिंग करेंगे, ये भी सब भगवान से ही सीखते हैं हम लोग। तो इसीलिए अपने पढ़ाई करते हुए भी आप शास्त्रों के अनुसार और एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में चल सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कैसे हम कार्य करें, कैसे रहें ताकि जीवन में कष्ट नहीं आए, नहीं तो हम सबके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, तो कैसे कष्टों से दूर जाना है, कैसे जीवन जीना है, और अंततः जो भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये तीन चीजें किसी कर्म को पूजा बनाती है, इसीलिए बारंबार इस चीज को याद रखिए, हर कर्म पूजा नहीं है, केवल वही कर्म जो शास्त्रों के अनुसार किया जाए, एक आध्यात्मिक शिक्षक के निर्देशन में किया जाए और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही पूजा है, अन्य कोई भी पूजा नहीं है। इस बात को स्पष्टता समझ लीजिए। अब हमने वर्णन किया कि शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो शास्त्र में मना है, नहीं करने चाहिए? यहां पर आप कुछ कार्यों को देख रहे हैं, ऐसे तो बहुत कार्य हैं, लेकिन ये चार प्रमुख कार्य हैं जो शास्त्र कहता है कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और आज के आधुनिक समय में ये चार चीजें हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, अपने आप को अच्छा परिवार से कहते हैं, अपने आप को मनुष्य कहते हैं। शास्त्र कहता है अगर ये चार चीजें आप कर रहे हैं तो आप मनुष्य ही नहीं हैं। मनुष्य स्तर पर आने के लिए चार चीजें बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये चार चीजें धर्म के चार खंभों को स्थापित करती हैं। धर्म चार चीजों पर खड़ा होता है, सत्यता, शौच, दया इत्यादि, तो ये सारी चीजें उससे समाप्त कर देती हैं। तो क्या है ये प्रमुखतः चार? वैसे तो शास्त्र में और भी वर्णन है, मांसाहार, नॉन वेज फूड बहुत अच्छा लगता है हमें, खाना फ्राई करके या क्या, यहाँ पर तो बहुत खाते हैं ना, फ्राई करके या रोस्ट करके या मसाला लगा के या बहुत कुछ। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा मांस खाने की इच्छा है तो भगवान अगले जन्म में उसको शेर बना देते हैं कि जाओ जंगल में बिना मसाला लगाए खाओ, कोई चिंता नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। और जो बहुत खाता है, केवल नॉनवेज नहीं, वैसे भी जो बहुत खाता है, केवल खाता रहता है, उसको अगला जन्म सुअर का मिलता, इसलिए सुअर जन्म भर जीवन भर खाता रहता है बस। तो मांस खाना ये केवल शास्त्र के विरुद्ध ही नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध तो है ही, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि उसमें भी आत्मा है, ऐसा नहीं है कि प्राणियों में आत्मा नहीं होती, आप चिकन को काटते उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा सब में है। अभी अगर आपके पास समय हो, वैसे आज हमने नहीं सोचा था, लेकिन एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं आपको, समय है ना अभी? ओके, 5 मिनट की केवल। ओके ये वाली देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो जानवरों के लिए कार्य करती है तो उसने ये बनाई है इसमें वो लोग कारण दे रहे हैं अमेरिका में बनाया गया है कारण दे रहे हैं कि क्यों हमें वेजिटेरियन होना चाहिए तो अभी शुरुआत में माइक ठीक नहीं था फिर से आपको शुरुआत से दिखाते हैं थोड़ा लाइट्स और कम कर दो तो एक क्लियर दिखाई देगा ये बीच की लाइट्स वगैरह या साइड की सर हम लोग चर्चा कर रहे थे देखा आपने उसमें ये जो वीडियो बनाया है किस तरह से जानवरों को को मारा जाता है, आपने शायद बीच में देखा होगा गाय को उल्टा टांगा हुआ था, जीवित थी, उसका गला काटा गया, खून बकेट में भर रहे हैं, फिर उसको तड़पने के लिए छोड़ते हैं। हम लोग ये सब देखते नहीं है, इसीलिए हमें खाने में आनंद आता है, लेकिन किस तरह से मारा जाता है, उनमें भी प्राण होते हैं ना, वो भी जीवित हैं, वो भी कोई डेड नहीं है। आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा, अगर पीछे तकलीफ हो रहा है तो कोई यहाँ आगे जगह है बहुत। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि मीट खाना, मांस खाना, नॉन वेज, और उसमें और एक बात बता रहा जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि फिश खाने से आप वेजिटेरियन कहलाते हो। कुछ लोग कहते हैं फिश खाना कोई गलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये चार चीज़ें, पहला मांस खाना, इसको बंद करना चाहिए हम लोगों को, तब हमारा कर्म पूजा की ओर जाएंगे। दूसरा जुआ खेलना, कौन बनेगा करोड़पति, हम लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए जुआ खेलते हैं, तो वो सब बंद होना चाहिए। शराब पीना, ये तीसरी चीज शास्त्रों में कही है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अवैध संग, अवैध संग मतलब स्त्रियों के साथ बिना विवाह के कोई गलत कार्य करना, तो ये सारी चीज़ें शास्त्रों में मना की गई हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों, हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़ा घड़ी ऑन कर दो। और कुछ चीज़ें शास्त्रों में अनुमति दी गई है, कुछ चीज़ों को कहा गया है कि शास्त्रों में करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यज्ञ इत्यादि करना, हॉस्पिटल खुलवाना, लोगों को कुछ बांटना, कुछ खाना इत्यादि देना, ये ठीक है, अच्छे कार्य हैं। तो कुछ कार्य शास्त्रों में मना है जिसका दंड मिलता है, और उसका दंड भी बहुत मिलता है। लोग सोचते कोई दंड नहीं मिलता, हमें जो मन में आए हम करेंगे, खाएंगे पिएंगे जिएंगे, कौन कुछ कहने वाला है। नहीं, बहुत दंड मिलता है, उसके लिए दंड बना के रखे हुए हैं। हम लोग तो सोचते हैं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब होता है तब हम प्रश्न करते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए वो कभी और चर्चा करेंगे कि किसके लिए क्या दंड कहा गया है, मांस खाने से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है। तो ये सारे कार्य शास्त्र में कहे गए अच्छे कार्य हैं, लेकिन चाहे आप अच्छे कार्य करो या बुरे कार्य, दोनों का फल मिलता है आपको। और दोनों ही कार्य पूजा नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि दोनों शरीर के स्तर पर हैं। इसीलिए हमें आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जैसा हमने पहले कहा, अपने कार्यों को पूजा बनाना है तो शास्त्र से अनुमोदित, एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और साथ साथ और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन अच्छा करने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। जैसा एक मंदिर आना, हमें नियमित मंदिर आना चाहिए, क्योंकि मंदिर आने से आध्यात्मिक वेव्स, तरंगे हमारे मन पर प्रभाव करती हैं। इसलिए मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना, ये निश्चित होना चाहिए। तो जब भी समय मिले, या ऐसा समय नहीं, दिन में एक बार कम से कम मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये एक कार्य आध्यात्मिक या पूजा होगा। दूसरा, हमें केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन कहते हो कि पाप लगता है, तो वेजिटेरियन फूड में भी तो जान होती है, प्लांट्स में भी तो प्राण होते हैं, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। तो इसीलिए अगर हम वेजिटेरियन भी नहीं खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाएंगे, तो मर जाएंगे, भूखे रहे, कुछ भी नहीं खाना। प्लांट्स में लाइफ है, जानवरों में लाइफ है, इसीलिए हमें वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, प्रसादेटेरियन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद जो इससे सब्जी इत्यादि से बनता है, जब वो भगवान को अर्पित किया जाता है, तो उसमें से जो पाप है उसको निकाल दिया जाता है, भगवान शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध है। इतना तो हम सब मानते हैं कि भगवान पूर्ण शुद्ध है। तो जब ये भगवान के सामने रखा जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, आप इसको शुद्ध कीजिए, तो भगवान शुद्ध कर देते हैं। तो फिर हमें केवल उसी को लेना चाहिए जो भगवान को अर्पित हो चुका है। अगर आप कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम जब खाने के पहले आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, 3 बार भगवान का नाम ले लेना चाहिए, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, कम से कम इतना बोलना चाहिए। कि हम इसको आपको अर्पण नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इसे शुद्ध कर दीजिए। जैसे आपके मेस में, आपके हॉस्टल में आपको सुविधा नहीं होगी कि पहले भगवान को अर्पण करें, लेकिन कम से कम स्मरण कीजिए भगवान का, और प्रयास कीजिए कि नॉन वेजिटेरियन फूड एकदम बंद करें, इंक्लूडिंग एग। ये गलत धारणा है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एग होते हैं। लोग कहते हैं कि जिन एग से चिकन नहीं निकलता है वो वेजिटेरियन एग है, और जिस एग से चिकन निकलता है वो नॉन वेजिटेरियन एग है। ये केवल अंडा बनाने वाली या जो अंडा बेचने वाली कंपनियां हैं उनका एक धोखा है, बस वो चाहते हैं कि लोग किसी ना किसी वेजिटेरियन लोग भी अंडा खाएं, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग, तो उनका काम बस इतना है। तो इसके लिए कुछ भी कहते हैं कि ये वेजिटेरियन एग है, ये नॉन वेजिटेरियन एग है, तो लोग सोचते हैं हाँ हाँ हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम वेजिटेरियन एग लेंगे। कैसे हो सकता, अंडा अंडा है, नॉन वेज है। कल को वेजिटेरियन चिकन आएगा, कल को वेजिटेरियन बीफ आएगा, क्यों कहेंगे कि दरअसल ये जो चिकन था जिसको हमने मारा वो प्योर वेजिटेरियन था, उसने कभी जीवन में नॉन वेज नहीं खाया, इसीलिए ये वेजिटेरियन चिकन है। ऐसा कह सकते हैं ना, जब अंडे को वो लोग वेजिटेरियन बना देते, कितना दिमाग लगाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, देखिए वो लोग अंडे को वेजिटेरियन बना दिया, और निश्चित है थोड़े समय बाद चिकन आएगा वेजिटेरियन, कुछ और आएगा, हम लोग कहेंगे हाँ हाँ हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो इसलिए अंडा भी नहीं खाना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ये सब नहीं खाएंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी, अंडे में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है, हमें अभी बढ़ रहे हैं प्रोटीन चाहिए। अरे हमारी सब्जियों में, दूध में, दही में उससे ज्यादा प्रोटीन है, हमें पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे सब, और हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है वो। आप तो, आप में से कितने लोगों का बैकग्राउंड साइंस का है, हाथ ऊपर कीजिए। साइंस के स्टूडेंट्स, दसवीं में बारहवीं में साइंस स्टूडेंट्स थे, ओके। तो आप लोगों के लिए एक चीज और दिखा, ओके आप में से कितने लोग इसको पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रहा है क्लियर? ये कंपैरिजन चार्ट है, दो तरह के प्राणी होते, एक कार्निवोर्स और एक हर्बीवोर्स, मांस खाने वाले और घास खाने वाले, राइट? तो इन दोनों की तुलना है, और यहां पर ह्यूमन बीइंग्स दिए, मनुष्य। अगर आप उनके शरीर की रचना देखोगे तो हमारे शरीर की रचना मांस खाने वाले शरीर की तरह नहीं है। जैसे आप वहां देख सकते हो उस तरफ उनका सब है, मांस खाने वालों का, और यहां पर मनुष्यों का। मांस खाने वाले जो प्राणी होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती, इसीलिए जो मांस डाइजेस्ट नहीं होता बाहर जा सकता, हमारी बहुत लंबी होती है, इसीलिए वो वहीं सड़ता है। तो हमारे जो शरीर है उसको मांस खराब करता, ये गलत धारणा है कि उससे हमें शक्ति मिलती है, दरअसल उससे खराब होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता। तो इसलिए हमें केवल प्रसाद लेना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए हम लोग ज्यादा नॉन वेज इत्यादि में इंटरेस्ट ना लें। साथ ही साथ हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ये आध्यात्मिक कार्य है, ये पूजा के कार्य हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग रोज भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है ना, ये हवा, पानी, अन्न, ये सब कौन देता है, भगवान देते हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और जैसे आज आप लोग यहाँ पर आए हैं ऐसे आकर प्रवचन सुनने चाहिए, भगवान के विषय को सुनना चाहिए और साथ ही साथ भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें भक्तों के साथ में करनी है। ऐसे लोग जो पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ में रहकर हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल कर सकें, सही दृष्टि में भगवान की पूजा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपको बताएं कि कई स्थानों में इवन जापान जैसे जगह पर लोग ये भक्ति का पालन कर रहे हैं, भगवान का नाम लेना, प्रसाद ग्रहण करना, और हम लोग भारत में रहकर नहीं कर रहे हैं। ये देखिए आपको एक और चीज दिखाते हैं बढ़ाने से। एक जापान के परिवार है दिखाया गया, लोग देखो कैसे रह रहे। देखिए ऐसे शहरों में जापान जैसे देश में अगर वे लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, जपा कर रहे हैं, तो भारत में हमें कितना करना चाहिए, है ना? तो इसीलिए अपने कर्म को पूजा बनाना ये कला है, हमें इसको सीखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाइट्स ऑन कर। किसी के कोई प्रश्न है? अगला जो हम लोग यहाँ लेक्चर अरेंज करेंगे उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चर्चा होगी। आप में से कितने लोगों ने एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओ माय गॉड, देखा था? कितने लोगों ने हाथ ऊपर कीजिए। ओ माय गॉड, यस। इसमें एक था भगवान का ये नहीं करना नहीं करना इत्यादि था ना। तो अगली बार उस मूवी के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको वो मूवी दिखाएंगे थोड़ा सा, वो क्या क्या कहते हैं और वो सही है या नहीं, अगली बार उस पर चर्चा होगी। सो अगली बार विषय होगा ओ माय गॉड, ठीक है? हाँ, तो आप से किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं, कोई संशय हो। कोई प्रश्न किसी का जो आपने सुना उसके विषय में? ओके, कोई प्रश्न नहीं। हाँ जी, अभी पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम, एक ही है, ज्यादा पड़े एक पूछ लीजिए।
गुरु जी, आपने एक सिचुएशन बताया था कि किसी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं तो कोई आदमी मिलता है, वो हम लोग को बोलता है कि बच्चा बीमार है, फिर ठग लेता है और उस पैसे का वो गलत यूज करता है। बट आई थिंक वी आर नॉट वाइज एनफ टू आइडेंटिफाई सच पर्सन, तो फिर हाउ कैन वी बी
जस्ट गिव देम प्रसाद, जस्ट गिव देम प्रसाद, नथिंग एल्स। अगर कोई ऐसा आता है, पता नहीं वो सच है या गलत है, हम नहीं जानते हैं, सो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको प्रसाद दे सकते हैं, ठीक है आप ये लीजिए, प्रसाद खाइए, भगवान से हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। सिंपल प्रार्थना कीजिए उसके लिए। यही तो तकलीफ है, इसीलिए वो लोग फायदा उठाते हैं।
Such people we get in even train.
They take the benefit because of this, because you feel bad, you feel guilty and you want to do it and they just show something like that. So we should not become sentimental. We should always be very careful in dealing with people like that.
The next question is, ये हम लोग जाते हैं मतलब इंडिया में मन्नत मांगते हैं भगवान के मंदिर में कि हो जाएगा तो ये करेंगे, तो मन्नत मांगना सही है या नहीं?
मान लीजिए कि भगवान नहीं करते तो भी आपको देना चाहिए, तब ठीक है। जैसे हम मानते ये करेंगे आप तो देंगे, ये व्यापार है। जैसे आपने मेरे लिए ये कर दिया तो मैं आपको इतना दूंगा, यानी जैसे कमीशन देना है ना, तो आपकी वजह से मुझे 10 लाख रुपए मिल गया तो 50,000 आपको दूंगा, ये भगवान के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। हमें अगर भगवान के लिए कुछ करना है तो वैसे भी करना चाहिए, बिना कुछ मांगे करना चाहिए। ठीक है, मेरी इच्छा, मैं आपके लिए दूंगा, मैं आपके लिए चांदी की प्लेट दूंगा, मैं आपके लिए दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन कोई मन्नत मांग कर नहीं देना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर अभी कीर्तन करेंगे थोड़ा सा। कीर्तन हमने बताया, ये भी आपने देखा होगा पीछे, ये भी आध्यात्मिक कार्य है, पूजा है, ये देखिए कीर्तन करना। तो भी आप सबसे विनती है कि आप सब साथ दें, थोड़ा कीर्तन होगा। और वैसे भी कहा गया शास्त्रों में कि कीर्तन करना चाहिए, तो कीर्तन करेंगे और फिर सबके लिए डिनर प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा। और आपसे एक विनती है कि शनिवार को, इस शनिवार को रामनवमी का उत्सव है, भगवान श्री रामचंद्र का बर्थडे, और आप सबको हम बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। तो आप आएंगे तो शाम को यहाँ पर भगवान की कथा होगी, कीर्तन होगा, बहुत से और लोग आएंगे। तो आप सब इस शनिवार को निश्चित शाम को 6:30 बजे यहाँ पर आइए, तो उस दिन भगवान की कथा भी होगी और एक छोटा ड्रामा भी किया जा रहा है, बहुत सुंदर ड्रामा भक्त आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और साथ ही साथ प्रसाद होगा। तो कृपया शनिवार को भूलिए नहीं, शनिवार को ठीक शाम को 6:30 बजे आप आ जाएं। अगर आपने अपने नंबर बाहर दिए तो आपको SMS भी आ जाएगा, लेकिन SMS आए या ना आए, आप शनिवार को यहाँ आइएगा, रामनवमी का उत्सव है, तो तो कृपया सब लोग आइए, और अगली बार का जो कार्यक्रम है आपको फोन से बता दिया जाएगा उसका जो डेट है, और ये ओ माय गॉड पर होगा। तो हम लोग वो मूवी देखेंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ठीक है। तभी थोड़ा कीर्तन होगा और फिर प्रसाद। कृपया कीर्तन के लिए सब अंदर आ जाइए, ये प्रोजेक्टर हटा दीजिए।